जब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि हमारे अंश जिनको अनंत कहते हैं माता देवी के गर्भ में उनको फिर वहां से निकाल करके माता रोहिणी के अंदर में कर दिया, कार्य करने से तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हारी लोग वैसे पूजा करेंगे जैसे ये भी करते हैं। तो योग माया वृंदावन में आई, गोलोक से अपर के धाम से, और भगवान ने जैसा कहा था वैसा कर दिया, देवी के गर्भ को ग्रहण कर, मथुरा में हमला हुआ तो देवकी का सातवां गर्भ अदृश्य हो गया, तो सब लोग कंस को गाली दे रहे थे, साफ दे रहे थे, यही कुछ करा दिया। हर एक बार बच्चे का वध करता था, लेकिन इस निंदा से बचने के लिए किसी तांत्रिक द्वारा गर्भ को उड़ाया दिया, तो कंस को कुछ भी पता नहीं कि सातवां गर्भ कहां पर लगा है, तो माता रोहिणी के गर्भ में आ गया। इसके बाद श्री भगवान और जन्म लेने के लिए तत्पर हो गए, भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता न आग ये साल से भाग न बना आग बिंदु है, सबसे पहले श्री भगवान आनक बिंदु ही श्री सुखदेव के मन में आए। श्री सुखदेव धन कहते हैं स्विव्रत पौषण धन सह देव, जिनके मन में भगवान उतरे हैं वे वसुदेव सह पाया सह, वे अद्भुत महिमा भगवान के पिता श्री वसुदेव जी भगवान के पौरुषम धाम को विधवत धारण किए हुए वैसे चमकने लगे जैसे भगवान शिव। पौरुषम धामा की व्याख्या अनेक आचार्यों ने किया है, सनातन गोस्वामी पाद इसका करते हैं श्री मूर्ति, भगवान की श्री मूर्ति, स्वयं श्री भगवान अपने स्वरूप से अपने दिव्य विग्रह से वसुदेव जी के मन में आ गए। ततो जगत मंगल में चित्त समाहितम सुर सुते देवी बद्धाद सर्वात महिमा की होकर काष्ठा दानंद का नमस्कार। जब श्री भगवान वसुदेव जी के मन में आए तो वसुदेव जी का एक बहुत गर्व है। इस कारण से श्री वसुदेव जी को देखना कठिन था। कोई भी व्यक्ति कोई जीव को देखने का साहस नहीं कर सकता। कंस जैसे पराक्रमी दुष्ट उनके पास आ भी नहीं सकते। दुरा सदर कार है निकट आना, कोई भी उनके पास नहीं आ सकता। सूर्य दो पहाड़ को प्रकाशित है, कौन व्यक्ति उनके पास जा सकता है? बहुत कठिन है, सूर्य पर देखना भी कठिन है। ऐसे ही भगवान जिनके हृदय में आ गए उन वसुदेव जी को देखना भी कठिन है और अति दुर्भर्ष है, और उनको पराभूत कर देना हरा देना तो अति कठिन है। कोई भी उनको अपने ज्ञान से अपने पौरुष से अपने बल से दबा नहीं सकता। जब दुरासद हो रहे उनको देखना ही कठिन था तो फिर उनको दबा देना उनको पराभव प्राप्त करा देना तो और कठिन। कुछ दिन श्री वसुदेव भगवान के श्रीमूर्ति को अपने मन में रखे पूर्ण प्रकाशित श्रीमूर्ति उनको ध्यान द्वारा उनके हृदय में नहीं भगवान स्वयं ही परिस्फुरित हो रहे थे। तो उस श्रीमूर्ति को श्री वसुदेव माता देवकी के मन में दिए। कैसे दिए सिंहसन लिखते हैं वैध दीक्षा उन्होंने अर्पित किया देवकी के हृदय। देवकी कैसे देवी अपने कर्म से काम से वसुदेव जी ने बताया माता देवी को कि हमारे हृदय में श्री भगवान का परम सुंदर श्री विग्रह आया है, स्वरूप आया है, तो उसका बहुत सुंदर वर्णन किया वसुदेव ने कि भगवान के चरण ऐसे हैं, भगवान के समस्त कमल ऐसे हैं, उनका मुख परम सुंदर है, सभी अंगों का वर्णन। माता देवकी बड़े ध्यान से सुन रही तो उसने भगवान के स्वरूप को अपने मन में धारण किया। यही है लव भूषण। इसकी व्याख्या किसी ग्रंथ में नहीं है वह दीक्षा क्या मतलब है, परंतु इसका यही अर्थ है वसुदेव ने वर्णन किया अपने हृदय में आए हुए भगवान का वर्णन किया माता देवकी से और देवकी ने उसको धारण किया मन से। इस तरह भगवान को दिया जाता है, वर्णन द्वारा ही भगवान किसी के हृदय में जाते हैं। तो श्री वसुदेव भी बड़ी एकाग्रता से बड़े स्नेह से अपने पुत्र का वर्णन कर रहे थे। उसके पुत्र चतुर्भुज हैं, राम नारायण का रूप है, उनके पुत्र भाव से जन्म है और माता देवकी ने उनको अपने हृदय में दे दिया। बाल विष्णु उसके विषय में सूर्य करते तत्व जगन मंगल और चुकांशन समाहितम सूर्य सूचय दधार सर्वात्मक काष्ठा देखा नंदकरण नमस्कार नमस्कार मन से माता देवकी ने भगवान को दिया विश्वेश जी के मुख से मतलब कान से सुना, सुनने पर भगवान का जो रूप उद्भाषित हो रहा था उसके मन से नमस्कार देवकी ने धारण किया। समाहितम सन आहितम बड़ी ही सावधानी से उस देव ने आहितम रखा देवकी के मन में सुर सुपेला वसुदेव जी सुर के पुत्र हैं। इसका एक विशेष अर्थ है कि वे बहुत बड़े वीर के पुत्र हैं, तो यही बहुत बड़ी वीरता थी कि भगवान को दे सकते थे देवी के हृदय। उन्होंने समाज का वक्त देवकी के मन में कृष्ण को रखा समाज पर, जैसे छोटे बच्चे को यदि पिता दे उसकी मां को रखने के लिए बड़ा सावधानी से देखा, इस तरह से देवकी ने परम स्नेह और एकाग्रता से भगवान को दिया उस देवकी को और देवकी ने धार धारण किया। कैसे धारण किया? जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूरा होता है तो पूर्व दिशा में उठता है, जैसे पूर्व चंद्र को पूर्व दिशा धारण करती है वैसे देवकी ने धारण किया भगवान को। इससे यह स्पष्ट हुआ कि देवकी से जन्म नहीं हुआ भगवान को, उसने भगवान को हृदय में धारण किया। एक दृष्टांत कितना सुंदर है, पूर्व दिशा चंद्रमा को जन्म नहीं देती है, चंद्रमा पूर्व दिशा में उड़ता है, इसी तरह से श्री भगवान देवकी से प्रकट हुए, वास्तविक जन्म नहीं होता है भगवान, यह जन्मा है और किसी को अपना पिता अपनी मां स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तो अपने मित्र के पिता श्री वसुदेव को स्वीकार किए और अपनी मित्र के जन्म देवकी को अपनी मां बनाए। कई लोग शंका करते हैं ये कैसा भगवान है जो जन्म लेता है, जन्म तो लेते ही भगवान, लेकिन उनका जन्म दिव्य है। इस दिव्य शब्द पर विचार करने से अलौक जैसे लोक में किसी मनुष्य का जन्म होता है वैसा जन्म नहीं, पर जन्म है वो दिव्य है। वो डिजर्व नहीं होता तो इसलिए वह जन्म स्त्री को मनाते हैं। जन्म होता है तभी मनाते, इसलिए भगवान कैसे हैं जगत मंगल, भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप समस्त जीवों का मंगल करने वाला है, जगत मंगल सारे संसार का सबका हित करने वाला है, अचुकांश और भगवान का कोई भी अंश चूक नहीं है जो श्री कृष्ण में ना हो, सर्वथा परिपूर्ण स्वरूप में। लोक में भी बात प्रसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला के पूर्ण होता है, अचूक अंश कोई अंश चूक नहीं है। शिव का अर्थ है बाकी हो जाना, अचूक अंश भगवान के पुरुषावतार सिंह अवतार, मत्स्य अवतार, भगवान श्रीराम और श्री रामन देव आदि सभी अंश श्री कृष्ण के भीतर है, सबसे युक्त भगवान है। इसी कारण से कभी कभी कह दिया जाता है श्री कृष्ण नर नारायण के अवतार है, श्री कृष्ण रामन देव के अवतार है, श्री कृष्ण रामचंद्र के अवतार है। वो ठीक ही है क्योंकि सभी भगवान के अंश उनके भीतर ही है, इसीलिए कभी कुछ कह दिया गया कभी कुछ कर दिया गया, लेकिन वास्तव में परिपूर्णतम पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण पराक्रम है। परम अवतारी समस्त अवतारों का मूल श्री भगवान माता ज्योति के मन में है, मन में आने के बाद इधर में आए, कौन से प्रतिदिन कैलेंडर देख रहा है कि देवकी का आत्मा घर कब जन्म लेगा, तो एक दिन आया तारा थी अकेले है, जो राजा था लेकिन कोई साथ में मंत्री नहीं देगा, कोई सेवा किया कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, अकेले है राजा था ही स्वीकृति आदि किसी ने रोका नहीं, कंस आया और तारा ने मेन दरवाजे से भीतर आ गया, जिस कक्ष में माता देवकी रहती थी उस रूम में उसने प्रवेश किया। तांबिक्ष कंस प्रभया की परंपरा विरोचरण के धर्मान सुख सीता आहर सुने प्राण हरो हरि धाम धूम सुतो दन्य पूरे देवकी को देखा बड़े ध्यान से, ताम मिच्छा देवकी कैसी थी कभया अधिकांतरण, अधिकांतरण अधिक श्री भगवान अंतर जिसके कुक्षी में थे, जिसके उदर में भगवान आ गए थे, उस देवकी को कंस देख रहा है। तो उसके मुख से निकल गया स्व अपने आप को कहने लगा, हाँ ये सब मैं प्राण हर हरि सीता राम सीता उस देवकी के उदर में मेरे प्राणों को हरने वाला हरि निश्चित आश्रय लिया आ गया है। हरि शब्द का अर्थ होता है सिंह, तेरहवीं अर्थ है कि गुहान छूता है, जिस प्रकार सिंह पर्वत की गुफा में रहता है और सुनर का निर्माण करके हाथी का वध करता है, यही कंस को स्मरण है। हरि अभी देवकी के उदर गुफा में है, अभी निकल करके मेरे प्राणों को हरे है, और पहले भी प्राण हिरण किया था हरि बयासी संग्राम में भगवान ने कालयानी का वध किया। कौन से उन जन्म में कालयानी, कालयानी हिरण्याक्ष का पुत्र था, हिरण्यकश्यप का भाई, बहुत प्रसिद्ध हिरण्याक्ष, उसके नौ पुत्र थे, नौ पुत्रों में कालयानी तो भगवान ने इसको मारा था अपने चक्र से, मारा प्राण हर गया। तो इसी का स्मरण कर सके हो रहा है कि हरि कह रहा है, लेकिन हरि का अर्थ इसमें पर मेरे प्राणों को हरने वाला है। ये सब देवी के गर्भ में मेरे प्राणों को हरने वाला हरि आ गया, वही जो प्रतिदिन में हमको मारा था, मेरे प्राणों को हर गया था। ये घटना याद आ रही है कम से कम, कैसे जान लिया कि हरि है, क्योंकि कंस जानता था कि समस्त तेज सौंदर्य सुख ज्ञान सब हरि में है, और हरि इस स्त्री के गर्भ में आ गया है, इसीलिए यह इतनी प्रसन्न है। इस समय इसका चेहरा कितना चमक रहा है, मृदो चरण की भावना देवी कारागृह को मृदो चरण के उज्ज्वलन की बहुत सुंदर बना रहे थे। कारागृह चमक रहा जो कारागृह भूमि थी, देवकी के गर्भ में जब भगवान नहीं आए थे तब कारागृह बहुत उदास था, लेकिन देवकी के गर्भ में जब भगवान आ गए तो वही कारागृह वैकुंठ जैसा सुंदर बनने है, बहुत शोभा बढ़ गई। कर्ण समझ गया कि इसके उदर में समस्त शोभा का तेज का आश्रय श्री हरि आ गया। क्योंकि जन्ना एवं यह देवकी पहले ऐसी नहीं थी, बहुत ध्यान से देखा यह मुस्कुरा रही है, इसके मन में बहुत बड़ा आनंद है, सुचि स्मिता सुचि स्मिता का अर्थ है निष्कपट हंसी, एकांत में है, इसके मुख पर सुख की मुस्कान, पवित्र हंसी, वही देव की जो पहले रोती रहती थी, उसके पुत्रों की हत्या होती थी, वे बराबर दुखी रहती थी, खिन्न रहती थी, उदास रहती थी, पर वही देव की आज इतना खुश है, इतनी सुंदर मुस्कान है इसको, तो इससे सिद्ध है कि हरि इसके उदर में आ गए, इसके पहले यह ऐसी नहीं थी। देखा है पंच पहले और अब अंतर है। देवी को कर साफ पहले या ऐसी नहीं थी, जन्मक वे नहीं थी, पूरा नियम या देव की एक दृष्टि इतनी तेजस्वी इतनी सुंदरी नहीं थी, इतना सुख की मुस्कान सुनी तो दुखनी थी। अपने पति के साथ कारागृह में बंद हुई और उसके पुत्र नारे मार दिए गए तो यह बहुत दुखनी थी, इसका चेहरा खून रहा था, लेकिन आज यह आनंद में है, सुख में है। तो देवकी का प्रसन्न मुख इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सुख के परम शोक हरि इसके हृदय में आ गए। और कर्म से हरि शब्द की व्याख्या कर रहा है, मेरे प्राण हरा हरि, जो मेरे प्राण को हरने वाला है, पहले हरा था वो है हरि, मे प्राण हरो हरि। तब अब सोच रहा है अकेले है, तदब्ध तस्वीर करणीय मासूम, अब मुझे इसके विषय में, इस हरि के विषय में क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है। पहले से निश्चय किया था कि मैं उसको मार देना हरी, देवकी को दंड किया था कारागृह ने, और सोचता था कि देवकी की जान मार देना। विवाह के दिन देवकी का कितना संकट आया था आप लोगों ने सुना है, वही कंस आज विचार में पूरा बदल गया है। तदर्थ तस्वीर करणीय मास में विदर्थ पवित्र निर्मोहन के रूप में अब हरि इतना निकट आ गया है देवकी के उदर में, इस विषय में हमको क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। भगवान के साथ तो वैर है ही, तो सोच रहा है लेकिन जो भी करना होगा हरि को करेंगे, देवकी का वध नहीं करेंगे। यदर्थ तंत्र न ढूंढते हैं, यह हरि अर्थ तंत्र है, अपने मतलब का अपने मतलब प्रयोजन के पक्ष में देवताओं की मदद कर रहा है, देवताओं के पक्ष से मेरा वध करने आया है, तो यह अपना विक्रम तो छोड़ेगा नहीं, इसकी जो भी शक्ति है वो लगा देगा, विक्रम न भी दिए अपने बल को छोड़ेगा नहीं, अपनी पूरी शक्ति लगा देगा मुझे मारने। लेकिन स्त्रियां ससुर गुरुमत्या यह जो कुछ करे देवकी का वध नहीं करूंगा, यह एक तो बेचारी स्त्री है, दूसरे मेरी बहन है और तीसरे ये गर्भवती है, यदि मैं देवकी का वध कर दूंगा तो उसी दिन श्री मेरी मेरी संपत्ति मेरा श्री चला गया है, मेरी आयु खत्म हो जाएगी और मेरा जस चला जाएगा, जस श्रियम हम अहंकार देवकी का वध करने से उसी समय मेरा जश खत्म हो जाएगा और मेरी संपत्ति खत्म हो जाएगी और मेरी आयु भी हो जाएगी। इतना सुंदर विचार कम समय आया। सुदेव जी विवाह के अवसर पर इसको समझा रहे थे, बहुत समय लग गया और उस नहीं समझा। अंत में वसुदेव ने ये कहा कि मैं पुत्रों को सौंप दूंगा, देवकी को छोड़ दो, तब वह माना। आज कोई समझाने वाला नहीं, अपने आप कंस में यह परिवर्तन है, देवकी के प्रति दया उत्पन्न हो गई। यह स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती है, इस समय इसका वध नहीं करूंगा। क्या सोचा कि ठीक है, हरि इसके गर्भ में है, जब हरि जन्म लेगा मनुष्य होगा तब मैं उसको मार दूंगा, देवी को नहीं मारूंगा, देवी को छोड़ दूंगा। सिद्धांत श्लोक बोल रहा है, साये से जीवन हम सब पढ़े तो बढ़ते तय तंत्र निशंसते देहे मृत्य तो मुंडा सुन के घंटा कदम हम कर्मान न हो। सोच रहा हूं साये सा जो व्यक्ति ऐसा क्रूर कर्म करता है, किसी का वध करता है, किसी को सताता है, तो वह सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है, जीवन अनुसरण करेगा। अति प्रकट जीवित है व्यक्ति, लेकिन जीते हुए भी वो मरा हुआ है, संकल्प है, वर्ते कल्योतन कंडीशन से कहना जो अत्यंत कुलता है व्यवहार करता है, किसी के प्रति किसी जीव को मारता है, दुख देता है, तो वो जीवित होते ही पूरा हुआ है। देवकी को मैं मार दूंगा, उसके बाद जीवित भी रहूंगा तो मरा हुआ है, जीवन और मरण नहीं क्या, जीने से कोई लाभ नहीं। देवकी को मार करके जीना भी हमारे लिए मरण हो सकता है, संसार में मेरा अपदस्य होगा, इसमें स्त्री का वध किया, बहन का वध किया और बेचारी गर्भवती थी उस समय पर। मैं चाहता हूं कि जीवित रहूं, मैं जीवित ही मौत ना करूं, जिसकी कीर्ति नहीं रहती है, जिसका जिसकी अपकीर्ति होती है इस संसार में, वह मरण के समय भगवान ने गीता में कहा है, संभाल कर सकता कितने मरना प्रति। किसी सम्माननीय सम्मान व्यक्ति की आपूर्ति हो जाए, अपदस्थ हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए मरण से भी अधिक सुखद है, मरणाल अतिरिक्त है। अर्जुन को समझाते हैं भगवान, जब तुम कुरुक्षेत्र के इस भूमि से युद्ध के समय चले जाओ, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, सब लोग तुम्हारे पौरुष की प्रशंसा करते हैं, किस समय तुम यहां से पीछे मिलोगे तो सब हंसे में तारीफ करेंगे, कहेंगे अंततः यह मैं पूछा घरों की सेना को देख करके डर गया और युद्ध से मुख मोड़ गया, तुम्हारी निंदा हो गई। पहले से हम लोग दस प्राप्त किए थे भगवान शिव को जीते हैं युद्ध में, इन जब लोग में निवास प्रोटू से युद्ध किए बड़ा बड़ा युद्ध करके दस कमाए तो सारा दस मृत्यु में हो गया, तुम्हारी निंदा हो गई। तो निंदा आप सुन करके फिर तुम जीवित नहीं रह पाओ, मरना बतल मरण से नहीं रह पाओ। इसलिए मैं कहता हूं तुम धनुष उठाओ, युद्ध करो, अपने मन को क्षमता में रह करके हानि लाभ में जय विजय में सम बुद्धि करके निर्मल मन को रह करके इस धर्म युद्ध को कर। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को इस समय युद्ध छोड़ना ठीक नहीं है, ऐसा युद्ध बड़े भगवान से युद्ध होता है। इस युद्ध में अगर हारते हो मारे जाओगे तो स्वर्ग नहीं जाएगा, जीतोगे तो पृथ्वी का राज है। ऐसे युद्ध को नहीं छोड़ना चाहिए। कंस भी एक क्षत्रिय है, उसको तो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अक्सर निर्दयता पूर्वक जीता है इस संसार में पाप करके जीता है उसका जीना मरण ही है, मरने से भी खड़ा है, स्वयं से जीवन खुशन करे। यदि कोई व्यक्ति मान के मांस खाता है, दूसरे प्राणी को कष्ट देकर के मार सकता है, तो ऐसे प्राणी का देह खा करके अपने पेट निर्वाह करके अगर कोई जीवित रहे तो जीवन तो विकार है। चाहे मछली या बकरा कुछ भी खा करके जी रहा है तो इससे तो अच्छा था वो मर जाता है, भूख से तरफ करके मर जाता है, मरने पर संगति होती है। लेकिन ऐसे जीवन जीने से क्या होगा, जिसे प्राणियों को दुख देकर जीना ठीक नहीं, सहस जीवन खुशों को खलू का निष्ठ वह व्यक्ति निश्चय ही जीते हुए मरा है, जो अत्यंत निशंसता से जीवन धारण करता है, अत्यंत निर्दयता से जीता है, जीवन कहे लेकिन दया के साथ है। सभी प्राणियों को अधिकार है जीने का इस ईश्वर की सृष्टि में, मनुष्य भी जीवित रहना चाहते हैं। बहुत कंसे शाम को पूछ रहे थे कि मच्छर काटते हैं उनको क्या कहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो ये मलेरिया कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आप बचिए, मच्छरदानी लगा देते, लेप लगा देते, इनको मारने का अधिकार नहीं है। याद रखने के लिए एक मच्छर को भी मारने पर ईश्वर के विधान के विपरीत आचरण होते, आप फंस जाएंगे। कर्मों की गति बड़ी सूक्ष्म है, इस कर्म का क्या फल मिलेगा, दंड मिलेगा, उसको ईश्वर बताएंगे। इस विषय में एक प्रसिद्ध कथा है, वहां महाराज धृतराष्ट्र पूछे हैं अपने सचिव से संजय से, तो संजय मैं कौन पाप किया था कि मेरे धीरे रहते मेरे 100 पुत्र मार दिए। संजय उत्तर नहीं दे पाए कि यही प्रश्न भगवान वेदव्यास देव से धृतराष्ट्र महाराज ने किया, क्या तुमको बताया पाप का फल है मेरे 100 पुत्र मेरे जीवित रहते हुए मार दिए। भगवान वेदव्यास ने उनको सुना और सब कुछ प्राचीन महाराज आप पूर्व जन्म राजा थे, इस कथा को उस दृश्य को वीडियो जैसा भगवान वेदव्यास दिखाते हैं। राजा थे और आपका एक बसैया था, वो आपसे बिना कुछ हंस के संतानों का हंस नामक पक्षी बच्चा हुआ था और हम उन बच्चों को मनाता था। आपने बिना कहे आपको खिला दे, आप खा करके बड़ी प्रशिक्षा करते थे, कभी 10 कभी 20 कभी ऐसे खिलाता था। इस तरह से 100 बच्चों को उसमें मार करके आपके लिए पकाना खाए। उसी पाप का फल हुआ इस मनुष्य जन्म में, इस जन्म में आपको पुत्रों के ईंधन का दुख भोगना पड़ा। आपके पास बुद्धि थी, बहुत बड़ा धन था, बड़े बड़े लोगों का संग था, लेकिन वो भी आप अपने पुत्रों को बचा नहीं पाए। यही कारण आपने हंस के बच्चों को मारा था, आपके कारण तो आपका रसोईया मारा था और आपको संसार के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पूछा नहीं कि इसका नाम और 100 बच्चों का मांस, 100 हंसों का मांस उसी का एक कर्म है। तो कब का किया हुआ पाप कब भुगतना पड़ेगा, कितना कर्म बाकी है, किस मिनट करोड़ कर्म का फल आएगा, इसका कोई नहीं जानता। इसलिए सावधान रहना पड़े, जो कर्म शास्त्र में निषिद्ध है मना किए गए उनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। केवल मांस खाना यही नहीं, किसी भी तरह का दुख देना नहीं होना चाहिए। अगर तुम दूसरे को दुख देकर के जीता है तो जीना मरण से ज्यादा खराब है। अग्नि दुख से मर गए, अनेक में मर गए, इतना दुख नहीं है। लेकिन पाप करके भी मर गए, पाप करके भी जीवित रहे तो जीवन से मरा जाता है। हम सोच रहे हैं शरीर से जीवन परिश्रम करे तो जीवे तो अत्यंत निशंसित है। जो मनुष्य बड़ी निर्भयता को दूसरे को सता करके जीता है तो जीवित रहते हुए वह निश्चित मरा है। देहे मृत्य तो मंदा से बनते मानते हैं जब तक जीव रहता है तब तक सभी लोग गाली देते हैं अपने अपने घरों के सामने तो कोई नहीं बोलता है दूर तक स्थान में अपने घर में सब लोग साफ होते हैं और शरीर छूटने के बाद वह कहां जाता है जनता प्रमुख हम निकांदी संगठन में होता है वो कम सोच रहा है अच्छे निर्दय अभी जीवित अवस्था में विकार सहता है सब लोग विकार में और मरने पर निश्चित अंधकारी संगठन में होता है नरक में कोई नाइट फैच नहीं है कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं उसमें भी अन जुटाने से अन जुटाने से मेरा अंदाज के रूप से ले जाते हैं प्राप्ति को बहुत बड़े पर्वत के ऊपर चढ़ा दे और पर्वत के शिखर से उसको नीचे पकड़ते हैं उस समय गिर करके उसका शरीर शीशे की तरह कई टुकड़े में हो बहुत मुश्किल बहुत दुख और फिर जीवित होकर शरीर उसको ले जाते हैं ऊपर फिट इस तरह लगातार पर्वत से पकड़ते रहते हैं और शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो इसको अंग जाने से और फिर जोन में ले जाते हैं भगवान ऐसे भिक्षुओं से युक्त रहता जिसके पत्ते तलवार जैसे उसमें उसको मार मार करके चलते बंगाल के और उसके कभी पेट में कभी नाक में कभी गला में पत्ते जो तलवार जैसे हार हार करके रोता है बहुत गुलाब करते जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को सताता है और मान में रखता है उसको अपने अन्य प्राणी से मिलता है कम सकता है कि मैं व्यक्ति का पद नहीं करता क्योंकि हम अतिशय पाप को नजर आया यह मेरी मांग सबसे पहले तो स्त्री है स्त्री पर गर्व करने के लिए और उस पर मेरा सम्मान है इसके साथ मेरी बहन और इसलिए दशा है कि ये गर्भवती है इस दुखमय स्थिति में इसका वध करना मेरे जीवन को नष्ट कर वर्तमान में भी मेरी संवस्थ मेरे धन का नाश हो गया जश का नाश हो गया आयु का नाश वो जो जीना है जीवन में से कई वर्ष माइनस हो जाए इसी में ये पाप नहीं है। और आगे डर हो नरक का डर, नरक से डरना चाहिए, कंस जैसा पापी भी डर रहा, उसको विश्वास है कि नरक है और यह शरीर छोड़ने के बाद पापी को जाना पड़ता है, जाने के लिए कोई सुविधा नहीं, और पहुंचने के बाद जो स्वागत होगा तो होगा। एक बहुत लंबा रास्ता है, भागवत में कहा गया है 99,000 योजन का लंबा रास्ता चलना पड़ता है, लगभग 4 लाख में 1 लाख 4 लाख कोस 8 लाख माल चलना पड़ता है। इतने लंबे रास्ते पर चलना चलते हैं कैसे, गंगा के बीच मार मारकर चलाते हैं, रास्ते में रोड कैसा है जाने के लिए, पक्त बालू का है, नीचे पक्त बालू का है और ऊपर से सूर्य की गर्मी बहुत प्रखर गर्मी है और धारा ऐसे लगते हैं दोनों तरफ दावाने लगे रहते हैं, बल में आग लगे रहते हैं, प्रचंड गर्म हवा लगती है, गर्म हवा और ऊपर की गर्मी और नीचे की बालू की गर्मी और खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं, रास्ते में खाना गर्म होता नहीं है, मीठे का रूप तो बात नहीं है, कहीं कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कहीं कोई होटल नहीं, जो नहीं सकते पानी नहीं पी सकते खाने का नहीं, तो भीतर पेट की गर्मी, भूख और दामानों की गर्मी, सूर्य की गर्मी, बालू की गर्मी, उसमें तड़पते ही चलना पड़ता है और 8 लाख मील ये कोई कल्पना नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव को समझ बोल केवल यह कह दिया गया कि नरक स्वर्ग कहां है, इनसे नरक दूर नहीं जाएगा, हमारे वहां कैसे दूर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, नरक है, नरक में जाना पड़ता है, इसको अनेक प्रकार के काम करने वाले लोगों और इतना ध्यान रखें कि इन नरकों का वर्णन सुनने के बाद महाराज परीक्षित काम के जीवों की दशा से और उन्होंने संस्कार ज्ञान ज्ञान में प्राप्त होते ही रहते हैं, उसने क्या कोई उपाय है जिसे पापी व्यक्ति भी तरफ नहीं जा सकता है, तब सुखदेव को समझना हर उपाय है, बहुत उपाय है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा उपाय है भगवान में यदि मन लग जाए तो सब पापों से मुक्ति हो जाती है, नरक नहीं जाती। मैंने बताया कि शौक करने भी यदि किसी का मन कृष्ण में लगा है, सपने में भी जो यदि किसी ड्यूटि के भगवान के ड्यूटी के दर्शन कर रहा है तो नहीं जाता, इसके विषय में एक सच्चा इतिहास उन्होंने सुना है। एक ब्राह्मण बहुत प्राप्त किया जिसका नाम रामी है, उसको नरक में ले जाने के लिए गंगा के दूध आ गए तो विधि को भगवान का नाम बोल दिया, वो भी अपने बच्चे का नाम नारायण, उसी नाम को विचारी से भगवान के चार पार्षद आ गए और गंगा के दूतों को बैठ करके भगा दिया। नरक नहीं है, यह इतिहास है। अतः भगवान का नाम जपने वाले, भगवान का प्रसाद खाने वाले भक्तों को तो नरक यात्रा कोई चिंता नहीं, वो तो जाएंगे। परंतु अन्य जो भगवान नाम नहीं लेते हैं और पाप करते रहते हैं, वो किसी भी तरह से किसी भी प्राश्चित से पुण्य कर्म से जब या काम आने से नरक में जाना काम नहीं कर सकते, उनको तो जाना ही है। इसके विषय में सुखदेव कहते हैं, भूम सोए के अंदर का न करते, निश्चित है वह पापी।